नमस्कार भारत, मंगलवार 18 अगस्त, मैं हूं निखिल रंजन। बैंकॉक बम धमाके में अब तक 19 लोगों की मौत, किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी।
नायक मंत्री और कना रथ बान को सरेंग क्वाम से चाहे।
श्रीलंका में आम चुनाव के बाद आज नतीजों का दिन, वोटों की गिनती कुछ ही देर में। संयुक्त अरब अमीरात से वतन लौटे प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे बिहार। भारत में सबसे साफ है मैसू, लेकिन स्थानीय लोगों को अब भी शिकायत।
वेस्ट डिस्पोजल में या दूसरे कहीं भी इतना कमियां होने के बावजूद क्लीनेस्ट सिटी बताया गया है, तो ऑब्वियसली शॉक तो लगता ही है।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक मंदिर के पास सोमवार को हुए धमाके में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 120 लोग घायल हुए हैं। थाईलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमलावरों ने देश के पर्यटन उद्योग और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर विदेशियों को निशाना बनाया। बैंकॉक में ही अलग अलग जगहों पर दो और बमों को निष्क्रिय किया गया है। किसी गुट ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दक्षिण सूडान में शांति समझौते के लिए निर्धारित समय सीमा खत्म हो गई है। इथियोपिया में शांति वार्ता के दौरान विद्रोहियों के नेता रिएक मशार ने इस समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन राष्ट्रपति सल्वा कीर ने समझौते पर मोहर नहीं लगाई है। समझौता नहीं होने पर दोनों पक्षों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ने इस पर चिंता जताई है।
United States deeply regrets that the government of South Sudan chose not to sign an agreement that was supported by all of the.
अमेरिका को इस बात का बहुत खेद है कि दक्षिण सूडान की सरकार ने उस शांति समझौते पर दस्तखत नहीं किए जिसे सबका समर्थन हासिल है। अमेरिका दक्षिण सूडान में इस समझौते के लिए दबाव बढ़ाने पर विचार करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की फौज का कहना है कि अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक उत्तरी वजीरिस्तान कबायली इलाके में हवाई हमले में कम से कम 15 चरमपंथी मारे गए हैं। फौज के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि पत्रकारों को उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान उत्तरी वजीरिस्तान में बीते साल जून से तालिबान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस मुहिम में अब तक कम से कम 2800 चरमपंथी मारे जा चुके हैं। पूर्वी यूक्रेन में सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच भारी गोलाबारी हुई है, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। खबरों के अनुसार मृतकों में 7 नागरिक और 2 सैनिक शामिल हैं। रूस का कहना है कि इस घटनाक्रम से संकेत मिलते हैं कि यूक्रेन ने नए सिरे से लड़ाई के लिए तैयारी की है, लेकिन यूक्रेन ने गोलाबारी के लिए विद्रोहियों को जिम्मेदार बताया है। पूर्वी यूक्रेन में गोलाबारी से उस संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है जिस पर इसी साल फरवरी में दोनों पक्षों ने दस्तखत किए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा संपन्न हो गई है। नरेंद्र मोदी ने कल दुबई में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और कहा कि संयुक्त अरब अमीरात भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने दमिश्क के नज़दीक एक कस्बे में विद्रोहियों के ठिकाने वाले सीरिया के हवाई हमलों की भर्त्सना की है, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए थे। दोमा कस्बे पर यह हमला रविवार को हुआ था, जिसके बाद स्थानीय अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं, निखिल रंजन के साथ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पिछली शाम एक धमाका हुआ और उसके बाद अब तक 19 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। धमाके में कम से कम 120 लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमाका वास्तव में एक बम से हुआ जिसे मोटरसाइकिल में छिपाकर रखा गया था। थाईलैंड में सेना के समर्थन वाली सरकार का कहना है कि ये हमला लोगों को निशाना बनाकर किया गया, जिसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नुकसान पहुँचाने का था। सैलानियों की आमद रफ्त वाले इलाके से दो बमों को बेकार करने की बात भी सामने आई है। पूरा ब्यौरा सुनिए संदीप सोनी से।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार शाम 7 बजे के आसपास हिंदुओं के एक मंदिर के नजदीक बम धमाका हुआ जिसके बाद हर तरफ अफरातफरी मच गई। ये धमाका इरावान मंदिर के पास हुआ जहां धमाके के वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। धमाके के समय घटना स्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने बीबीसी को बताया,
I was walking to a mall right next to the shrine and I heard a huge blast.
मैं मंदिर के पास एक मॉल की तरफ जा रहा था, तभी मैंने एक जोरदार धमाका सुना। मैंने देखा लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। धमाके के बाद घटना स्थल का दृश्य दिल दहलाने वाला था। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी जेम्स सेल्स ने बीबीसी को बताया,
There were lots of bodies. There was one person who'd literally been unfortunately cut in half by the blast and
वहां कई लाशें पड़ी हुई थीं। एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसका शरीर धमाके की वजह से दो हिस्सों में टूट गया था। कई लाशें चीनी पर्यटकों की थी। धमाके के लिए बम किसने लगाए थे अभी ये पता नहीं चला है। इतना जरूर मालूम हुआ है कि शहर के कुछ और हिस्सों में भी बम लगाए गए थे। बैंकॉक पोस्ट के संवाददाता मार्क ह्यूक्स ने बीबीसी को बताया, पूरे शहर में सायरन बज रहे थे, कुल तीन बम लगाए गए थे। अच्छी बात यह हुई कि शहर में अलग अलग जगहों पर दो और बमों में धमाका नहीं हुआ। इरावान मंदिर के पास हुआ धमाका काफी शक्तिशाली था। थाईलैंड के पुलिस प्रमुख सोम्योत पोमपुमयोंग ने बताया, धमाके का असर लगभग 100 मीटर के दायरे में हुआ। जानकारों का कहना है कि धमाके के लिए 3 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। थाईलैंड में इस समय कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, सेना समर्थित सरकार है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता का कहना है, सैन्य सरकार के प्रवक्ता कह रहे थे कि पूरा जोर इस बात पर है कि धमाके की जांच के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वहीं थाईलैंड के रक्षा मंत्री प्रवित वोंगसुवान का कहना है कि यह धमाका विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाने के इरादे से किया गया था, इसीलिए धमाके के लिए इरावान मंदिर को चुना गया जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बीबीसी के रक्षा और राजनयिक मामलों के संवाददाता जोनाथन मार्कस का कहना है कि थाईलैंड में इस तरह का हमला और धमाका पहले कभी नहीं हुआ। हो सकता है कि इस धमाके के पीछे दक्षिण में रहने वाले मलय मुसलमान विद्रोहियों का हाथ हो जो थाई शासन के खिलाफ एक दशक से भी ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी बैंकॉक में कभी हमला नहीं किया। जब तक इस धमाके के सुराग नहीं मिलते, हमले के पीछे किसका हाथ है और वो क्या चाहते थे, कहना मुश्किल है।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए धमाके के बाद अब तक 19 लोगों के मौत की पुष्टि। रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप सोनी। इधर श्रीलंका संसदीय चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है। नतीजों का सबसे ज्यादा इंतजार पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षा को है जो इस चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद पाले हुए हैं। कल हुए चुनाव के बारे में चुनाव आयुक्त महिंदा देशप्रिय ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इस बार चुनाव बिल्कुल शांति के साथ हुए हैं। उन्होंने कहा, पिछले 48 घंटे में हमने अब तक किसी बड़ी घटना के बारे में नहीं सुना, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस विभाग में 1983 से था तो हमने बहुत कम ऐसे चुनाव देखे हैं, खासतौर से 1970 के बाद, जो बिना किसी बड़ी घटना के संपन्न हुए हों। इस बार ऐसा हुआ, ये बड़ी बात है। श्रीलंका के चुनाव आयुक्त के शब्द। नतीजे आने से पहले जो रुझान मिले हैं उनमें कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की स्थिति बेहतर हो सकती है। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि चरमपंथ के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे को बेहद कामयाब बताया है। मोदी ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन यानी सोमवार को मसदर सिटी का दौरा किया और दुबई में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन से बात की और पूछा कि भारत के लिहाज से मोदी का दौरा कितना कामयाब रहा।
देखिए, कामयाबी आप नाप सकते हैं इसी आंकड़े में कि 34 साल के बाद हिंदुस्तान का कोई पीएम यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचा। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब हर कोई ये पूछ रहा है कि कोई एक ऐसी चीज बताइए जो मोदी साहब वहां से हासिल करके आए, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ा ऐलान। लेकिन कूटनीतिक रिश्तों में, सामरिक रिश्तों में मुझे लगता है कि भारत और यूएई के बीच में इतना करीबी रिश्ता अभी तक रहा है और गहराई उसमें लाने की जरूरत है कि मोदी साहब का जाना और ये संदेश भेजना कि हिंदुस्तान के लिए ये एक बहुत अहम रिश्ता है, मुझे लगता है कि ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे ज्यादा कोई एक अगर हम ये कहें कि कोई अनाउंसमेंट हो या कोई प्रोजेक्ट हो तो इससे हम शायद ना नाप पाए जो इसकी असली जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है।
दो प्रमुख बातें थी जब मोदी वहां गए थे तो दो बातों की बड़ी चर्चा थी कि एक तो चरमपंथ पर यूएई के साथ भारत का सहयोग बढ़े और दूसरा भारत को निवेश मिले यानी आर्थिक मदद मिले। इन दोनों मोर्चों पर मोदी कितने कामयाब हुए?
जहां तक आतंकवाद का सवाल है, यूएई एक अरसे से भारत की मदद तो कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन, बहुत दो तीन ऐसी मिसाल है जब हिंदुस्तान ने डिपोर्टेशन चाहा है आतंकवादियों का जो यूएई में पकड़े गए और विदाउट लीगल हैसल्स के साथ जो है यूएई ने हिंदुस्तान की मदद की, तो एक रिश्ता तो अभी तक कायम रहा है लेकिन अब उसमें और पेशरफ्त लाने की जो अब बात चल रही है और खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म है जो हिंदुस्तान को पुश कर रहा है तो अब यूएई ने कहा है कि वो हिंदुस्तान को समर्थन देगा। तो मुझे लगता है कि दहशतगर्दी के सवाल पे गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी है। जहां तक निवेश की बात है, अब देखिए इसमें एक माहौल तो बहुत अच्छा जो है दिखाई दिया, मोदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन आने वाले दिनों में यूएई के जो निवेशक हैं वो किस हद तक आगे आने के लिए तैयार होंगे, अभी तक उनका जो तजुर्बा रहा हिंदुस्तान के अंदर इतना शायद बढ़िया नहीं रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे वो उसको कामयाब उसको ना बना सके। अब कितनी तब्दीली जो है मोदी साहब ला पाते हैं शायद उसी पे वही एक बुनियाद बनेगा निवेश के जो फ्रंट पे जो वायदे इन्वेस्टर्स ने किए हैं और जो चाहत जो है मोदी ने वहां पे एक्सप्रेस किया कितना सफल होता है।
यूएई में भारत की भी बड़ी आबादी रहती है, सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बड़ा उत्साह दिखाया, दुबई में बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई, उन लोगों ने अपनी समस्याएं भी मोदी के सामने रखी, उनके लिहाज से आप इस दौरे को कैसे देखते हैं?
मुझे लगता है कि अगर हम भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी नजरिए से इसको देखें तो ये एक बहुत ही सफल यात्रा रहा है, क्योंकि जहां तक यूएई के शासकों के साथ जो इनका रिश्ता है वो एक इस पे निर्भर करता है कि यूएई के रिश्ते हिंदुस्तान के साथ कैसे हैं, और जब मोदी साहब ने वहां पे जाके क्राउन प्रिंस के साथ जो उनकी अच्छी मुलाकात हुई और मीटिंग में भी आपने सुना होगा कि वो बार बार कहने की क्राउन प्रिंस के लिए आप तालियां बजाइए, तो इन तमाम चीजों से एक संदेशा जाता है यूएई के शासकों तक जो कर करा के जो है भारतीय लोगों के लिए मददगार होगा। मुझे लगता है कि उनकी नजर से इस बात को दोबारा मोदी ने दोहरा दिया कि हिंदुस्तान यूएई का एक बहुत करीबी और इम्पोर्टेंट पार्टनर है।
वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी का दौरा कितना कामयाब रहा। प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह दिल्ली वापस आ चुके हैं और आज वो बिहार जाएंगे। सबसे पहले वो आरा जाकर कुछ सरकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे और फिर सहरसा में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बारे में जानकारी हम आपको बाद में देते रहेंगे। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से दो दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जा रहे हैं। इस दौरे के पहले सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बदलते राजनीतिक समीकरणों के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में किसानों की चौपाल लगाएंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। राहुल गांधी के दौरे का फोकस उनके संसदीय क्षेत्र पर है, लेकिन उनके उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के पहले ही सियासत के बदलते समीकरणों के संकेत मिलने लगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले कामकाजी दिन कांग्रेस ने किसानों और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विधानसभा घेरने की कोशिश की। पुलिस ने विधानसभा की तरफ बढ़ते कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। कांग्रेस का दावा है कि इसमें राज्यसभा सांसद राजबब्बर समेत कई नेता घायल हो गए। राजबब्बर ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा,
सपा सरकार सोचती है कि दिल्ली की सांप्रदायिक ताकतों का साथ देके ये हमें दबाना चाहती है। कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी, ये अभी आगाज है, आने वाले कल में इस शासन का भी और सांप्रदायिक ताकतों को दिल्ली में भी हम डटकर मुकाबला।
कांग्रेस जमीन पर उतरकर उत्तर प्रदेश में सियासी पकड़ मजबूत करने के इरादे में है और इसके लिए समाजवादी पार्टी की सहयोगी के बजाय विपक्ष की भूमिका में दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर कहते हैं,
हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है राहुल गांधी जी, जिनसे हम प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। किसी को दिखाने की कोई बात नहीं, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के।
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के दौरे को ज्यादा भाव नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी सरकार के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने प्रदेश सरकार पर लगाए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है।
समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है जो सांप्रदायिकता के विरोध में संघर्ष करती रही है। श्री मुलायम सिंह यादव ने लगातार भाजपा और सांप्रदायिकता के विरुद्ध जनता को तैयार किया है। इसका देखिए, यहाँ कोई आए कोई जाए तो लोकतंत्र है, इसमें कौन तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई कुछ है नहीं। वो अपना ऐसे ही कोशिश करने करके एक्सरसाइज है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।
समाजवादी पार्टी कांग्रेस की चुनौती को महत्व नहीं दे रही है। अमेठी जा रहे राहुल गांधी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती शायद यही हो। उन्हें न सिर्फ किसानों की समस्याएं सुननी है बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को वो मजबूती भी देनी है जिससे उसके विरोध को गंभीरता से लिया जाए।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा आप सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ। मैसूर हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर है, इसे लेकर यहाँ के लोगों को थोड़ी खुशी है लेकिन थोड़ी हैरानी भी। यहाँ के लोग मानते हैं कि सफाई के लिहाज से शहर को अभी कुछ और बेहतर किया जा सकता है। हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी ने मैसूर जाकर पता किया कि आखिर ये शहर सफाई के मामले में हिंदुस्तान में अव्वल क्यों है। आइए सुने कि वहां उन्हें क्या पता चला।
मैसूर के नागरिक अभी भी हैरान हैं कि उनके शहर को केंद्र सरकार ने सबसे स्वच्छ शहर माना है। लोग खुश भी हैं लेकिन वो मानते हैं कि शहर को और साफ रख सकते हैं। सुनिए कारोबारी स्वरूप क्या कहते हैं।
क्यों बोले तो आज भी वो वेस्ट डिस्पोजल में या दूसरे कई भी अंग में आप लिए तो आज भी हमारे में बहुत सारे कमियां हैं। इतना कमियां होने के बावजूद मैसूर को क्लीनेस्ट सिटी बताया गया है तो ऑब्वियसली शौक तो लगता ही है।
इंजीनियर सुचित्रा का नजरिया थोड़ा अलग है।
नहीं, आश्चर्य नहीं, पहले खुश हम सब खुश हुए हैं, लेकिन हमारा सुझाव है कि और भी कुछ एरिया में इम्प्रूव करने की जरूरत है।
सामान्य तौर से मैसूर के लोग मानते हैं कि उनके शहर की स्वच्छता ऐतिहासिक है। आपको हर कोई बताएगा कि मैसूर शहर को एक प्लांट सिटी के तौर से 1904 में बसाया गया था। इसके लिए आज भी मैसूर के महाराजा नालवाड़ी कृष्ण राजेंद्र वोडियार की तारीफ सुनने में आती है। शायद मैसूर ही एक शहर है जहाँ सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड या CIT भी बनाया गया, जिससे भूमिगत जल निकासी, भूमिगत साफ सफाई और भूमिगत पीने का पानी का सिस्टम लगाया गया। तो अभी क्या कारण है जिससे मैसूर को यह स्थान मिला है? मैसूर ग्राहक परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्र प्रकाश कहते हैं,
ट्रस्ट बोर्ड ने हर जगह एक लेआउट जो बनाया उसमें अंडरग्राउंड सीवरेज जो कि सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट का इंतजाम किया, अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, लेन्स, बाई लेन्स, इस सब का इंतजाम किया। तो मैसूर को जो बनाया है ये एकदम प्लान्ड सिटी की तरह बनाया है। और चंडीगढ़ तो आजकल की बात है, ये तो 100 साल पुरानी प्रथा है यहाँ पर।
तो ये इसको कैसे साफ रखते हैं लोग? मतलब
मैं ये कहूँगा कि 3 वजह हो सकती हैं। एक तो ये है कि लोगों में साफ रखने की ऐसी प्रथा है कि आपको ताज्जुब होगा, सुबह गृहिणी सबसे पहले उठ करके घर के बाहर जा करके झाड़ू लगा करके रंगोली डालती है, पानी डाल के रंगोली डालती है। हर घर में आपको ये मिलेगा सुबह, तो घर तो वैसे ही सामने साफ हो जाता है। दूसरी क्या है कि ये सॉलिड वेस्ट को उठाने की एक परंपरा रही है और सुबह एक करीब 1-2 घंटे के अंदर ही वो ऑटो रिक्शा आ जाती है और उसमें हम अपना सब कचरा बाहर देते हैं। तो कोनों में डालना, इधर उधर फेंकना, ये हमारे घरों की प्रथा नहीं रही है। और तीसरी बात क्या है कि अभी पिछले 10 सालों में हमें कुछ पैसे मिले, फंड्स मिले, जैसे नरम का फंड मिला, उससे ये जो व्यवस्था है इसकी और अच्छी कर की गई है।
तो क्या मैसूर को एक भाग्यशाली शहर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ बेंगलुरु जैसे जनसंख्या का दबाव अचानक नहीं बढ़ा? सुनिए मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर CG बेटसुरमठ की राय।
गुड क्वालिटी वाटर and I think these are the parameters which are considered for ranking the cities.
हम समझते हैं कि मैसूर को यह दर्जा देने का कारण हमारे शहर का तोस अपस्थित प्रबंधन, स्वच्छता प्रथाओं, पीने के पानी की व्यवस्था है. ये थे डॉक्टर बेटसूर मठ के शब्द. मैसूर के नागरिकों की फिक्र आज की नहीं है, वो कल की है, खास तौर से जिस तरह मैसूर शहर तेजी से बढ़ रहा है. बड़ी चुनौती है भविष्य में अपना दर्जा बरकरार रखने की. मैसूर से इमरान कुरैशी.
भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने एक पूरा मंत्रालय बना रखा है. गंगा की सफाई के लिए सरकार ने नमामि गंगे नाम के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है, जिसके तहत वर्ष 2019 तक 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है. लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत में गंगा से ज्यादा प्रदूषित नदियां भी हैं. बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव इस बारे में जानकारी दे रहे हैं. उनसे बात की वात्सल्य राय ने.
आम धारणा है कि गंगा चूंकि बहुत बड़ी नदी है, बहुत वृहद है, तो उसमें प्रदूषण भी सबसे ज्यादा होगा, ऐसा लगता है. लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि यमुना, जो खुद गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, गंगा में जाके मिल जाती है, उसमें कहीं ज्यादा प्रदूषण है गंगा से. अगर आंकड़ों की बात करें तो ये समझिए कि गंगा में प्रतिदिन करीब 2 अरब लीटर से ज्यादा प्रदूषण जो है तमाम किस्म का वो बहाया जाता है, वो पहुंचता है. और यमुना में जो सीवेज होता है 4 अरब लीटर प्रतिदिन से ज्यादा प्रदूषण यमुना में बहाया जाता है. तो एक तरह से करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा फर्क है यमुना और गंगा के प्रदूषण के स्तर पे, प्रतिदिन होने वाले प्रदूषण में. और एक नज़र इस पर भी दौड़ाने की ज़रूरत है कि आखिर गंगा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाले कौन से राज्य हैं. अगर हम उद्योगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्य ऐसा जिसमें प्रदूषण गंगा में ज़्यादा हो रहा है वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद नंबर है उत्तराखंड का, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, और उसके बाद बिहार का नंबर आता है. और इन सभी आंकड़ों में जो एक बात जो सबसे हैरान करने वाली बाहर आई वो ये थी कि पश्चिम बंगाल में जो गंगा में बहाया जाने वाला प्रदूषण है वो उत्तर प्रदेश से भी करीब 25% ज्यादा है.
तो नितिन, मोदी सरकार 2,500 करोड़ गंगा की सफाई के लिए देने की बात कर रही है, क्या पिछली सरकारों ने भी इन नदियों की सफाई के बारे में कुछ सोचा था?
बिल्कुल बात सही है. ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टेन्योर में शुरू हुआ था, और ये पूरे आंकड़े जुटाने में एक शख्स है, उनका नाम है मनोज के, IIT में है, उन्होंने काफी शोध की है, तो उन्होंने उस इतिहास के बारे में हमें और बताया.
गंगा की सफाई अभियान शुरू हुआ सन 1985 में, जब पहली बार गंगा एक्शन प्लान बनाया गया. गंगा एक्शन प्लान 2 को लॉन्च किया गया 1993 में, और उसके साथ फिर गंगा की जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी लिया गया, और स्टैगर्ड तरीके से एक प्लान बनाया गया कि सबको एक साथ साफ किया जाएगा.
कितना पैसा उस समय एलोकेट हुआ था? और
सरकारी आंकड़े के मुताबिक लगभग 974,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च हो चुका है गंगा एक्शन प्लान 1 पे.
974 करोड़.
हाँ जी, 974 करोड़ रुपया रिलीज हो चुका है.
ये पिछली सरकारों का है या इसमें नई सरकार भी शामिल है?
ये है 1985 से 2014 तक का.
अब देखने वाली बात वास्तव में ये होगी कि चूंकि मौजूदा सरकार ने नमामि गंगे नाम का प्रोजेक्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत वो गंगा की सफाई अभियान में 20,000 करोड़ रुपए 2019 तक लगाने की बात कर चुके हैं, गौर करने वाली बात सिर्फ यही रहेगी कि हर वर्ष कितना पैसा इस फंड से इस्तेमाल हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है.
गंगा की सफाई के लिए सरकार ने जो बनाया है नमामि गंगे नाम के प्रोजेक्ट, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे बीवी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव. उनसे बात की हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने. और अब बात अखबारों की. आज सुबह के अखबारों में क्या कुछ है इस पर नजर डाल चुके हैं संदीप सोनी, और इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं. तो बताइए संदीप, क्या है अखबारों में?
निखिल, आज हिंदी अंग्रेजी के तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर दो खबरें प्रमुखता से छपी हैं. पहली, बैंकॉक में जो धमाका हुआ है वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में कल क्या कुछ कहा वो खबर. हिंदुस्तान देखते हैं पहले. हिंदुस्तान ने लिखा है, सुर्खी लगाई है कि आतंकवाद अच्छा बुरा नहीं होता. पीएम मोदी ने UAE में भारतीयों को संबोधित किया और कहा दुनिया तय करे कि वो आतंक के साथ है या मानवता के साथ. हिंदुस्तान में ही बैंकॉक में जो मंदिर में धमाका हुआ है वो खबर है, और तस्वीर के साथ समझाया गया है, दिखाया गया है, और घायलों की और मृतकों की तस्वीर भी छपी हुई है. हिंदुस्तान में ही ये खबर है कि कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों की सज़ा को बरकरार रखा है. इसके अलावा दैनिक भास्कर देखें तो इसके पहले पन्ने पर बहुत दो लाइन में सुर्खी लगी हुई है कि इस धरती से आतंक के खिलाफ एकता का स्वर उठा है, उसे समझने वाले समझ ही गए होंगे। इशारा है दुबई से मोदी का पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम की तरफ। साथ में ये सुर्खी भी छोटी सी लगी है कि दुबई में भी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पुरानी सरकार को कोसा। दैनिक भास्कर में ही ये खबर है कि चार राज्यों में अगले चार दिनों में भारी बारिश की चेतावनी है। ये राज्य हैं यूपी, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल। अमर उजाला देखें तो अमर उजाला ने एक खबर बहुत विस्तार से छापी है कि 10 प्रमुख पूर्व सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है और वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। दैनिक जागरण देखें तो यहाँ सुर्खी है यूएई हमारे साथ, सुधरे पाक, मरहबा नमो, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का समय, वही दुबई में नरेंद्र मोदी का संबोधन और तस्वीर।
बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी समीक्षा के लिए। और अब बात फैला उजियारा की।
सदियों से गूंजती आवाजें,
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत ना होता।
मैं तो विश्वास में।
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा। पहला प्रसारण रविवार को दिनभर में और पुनः प्रसारण मंगलवार विश्व भारती में।
नमस्कार, भारत में अब वक्त है उन खबरों का जिन पर आज पूरे दिन रहेगी हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के आरा में सरकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे और सहरसा में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कथित अत्याचारों के विरोध में कांग्रेस ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से पकड़े गए पाकिस्तान के कथित चरमपंथी मोहम्मद नावेद का दिल्ली में आज लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। श्रीलंका में कल हुए संसदीय चुनावों के नतीजे आज आने की संभावना है, जहां पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में सेना और विद्रोहियों के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है, जिससे इस इलाके में एक बार फिर युद्ध जैसी स्थिति बनने की आशंका पैदा हो गई है। इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लीबिया के आग्रह पर अरब लीग आज काहिरा में एक विशेष बैठक करने वाला है।
पहले लोग धुआं पैदा करके, आग जला करके और फिर उसके बाद कॉइल से मच्छर भगाने वाली जो अगरबत्ती आती थी उससे, गुड नाइट से, लिक्विड से और तमाम दूसरे तरीक़ों से मच्छर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये काम आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। और कैसे अगर जानना है तो आइए bbchindi.com पर। यहाँ कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक मंदिर के पास सोमवार को हुए धमाके में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 120 लोग घायल हुए हैं। किसी गुट ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान की फौज का कहना है कि अफगानिस्तान की सीमा के नज़दीक उत्तरी वजीरिस्तान कबायली इलाके में हवाई हमले में कम 15 चरमपंथी मारे गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच भारी गोलाबारी हुई है, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न हो गई है। नरेंद्र मोदी ने कल दुबई में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और कहा कि भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा संयुक्त अरब अमीरात। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में। इस बीच अगर खबर देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने। संदीप सोनी के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।